जी, अब अगली आयत पे जाने से पहले थोड़ी सी बात है। आयत 177, इसका नाम आयते बिर है। बेसिकली इसमें इस्लाम की तरतीब बताई गई। अगर आज हम देखें तो नेकी के नाम पर इंसान दो किस्म के काम करते हुए दिखते हैं। एक वो हैं जो ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज के नाम पे सोशल वर्क करते हैं, फलाह बहबूद का काम करते हैं, और वो कहते हैं कि दीन की क्या ज़रूरत है, नमाज रोज़ा तो बस एक ऐसी रिचुअल की बात है, असल काम तो हम कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक दूसरा गिरोह हमें दिखता है जो सिर्फ रिचुअल्स पे ज़्यादा बात करता है, लेकिन इंसानी मसाइल का हल इस्लाम की रोशनी में नहीं देखता। और बस दफ़ा देखा गया कि ये दोनों गिरोह एक दूसरे से मुख्तलिफ और दिलों में कुछ रंजिश रखते हुए चलते हैं। इन सब को जमा कर दें तो इस आयत में अल्लाह ताला ने नेकी की एक तरतीब रखी है। आइए आयत शुरू करते हैं, फिर इंशाल्लाह इसमें आपकी मदद की जाएगी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف کر لیے یعنی نیکی صرف یہی نہیں کہ قبلہ کس طرف ہونا چاہیے بلکہ نیکی یہ ہے اب یہاں سے اگر آپ ایک ایرو ڈال دیجئے جو چیزیں آپ پڑھیں گے کہ پہلے سب سے نیکی کی کیا چیز ہے من آمن باللہ جب سب سے پہلے نیکی کا آغاز کسی کے ایمان لانے سے ہوتا ہے من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکت والکتاب والنبیین نیکی تو اس کی ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں یتیموں مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرے اور مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب وہ عہد کریں تو اس کو پورا کریں اور تنگی اور مصیبت میں وہ صبر کریں اور حق اور باطل کی جنگ میں صبر کریں یہی ہیں وہ سچے لوگ اور یہی ہیں متقی یہاں آپ دیکھیے کہ پوری ترتیب ہے دین کی اصل بات یہ ہے کہ آپ درخت کو پتوں سے شروع نہیں کر سکتے جڑوں سے ہی درخت شروع ہوتا ہے تو ہمارے دین کی ترتیب کیا ہونی چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنے عقائد کی فکر کریں جب ہم عقیدے کے اعتبار سے مضبوط ہیں تو پھر اس کے بعد دوسری چیز عبادات کے رنگ میں اس کا رنگ ہمیں نظر آنا چاہیے یہ نہیں ہو سکتا کہ دل میں اللہ سے محبت اور پانچ وقت کی نماز جو ہے وہ مشکل لگے پھر جب عبادات پختہ ہوتی ہیں تو پھر حقوق العباد اچھے لگتے ہیں پھر لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں پھر اخلاقیات ہیں آج نیکی کے نام پہ آپ دیکھیے تو ہر انسان کے دل میں ایک حب ضرور ہے کسی سوسائٹی کا سب سے جو نچلا طبقہ ہوتا ہے نا اس کو لوگ کرمنلز کہتے ہیں بگڑے ہوئے لوگ شرابی جواری زنا کرنے والے اور کرنے والیاں آپ کبھی قریب سے ان کو بھی دیکھیں گے نا تو اس کے بھی دل میں نیکی کی خواہش ہے اور یہ جو لفظ بر رہا ہے نا سکون کو کہتے ہیں اطمینان تو بر کیا ہے نیکی کیا ہے جو اطمینان بخشے دریا میں سے سمندر میں سے نکل کر جب آپ خشکی پہ پاؤں رکھتے ہیں نا تو وہ کیفیت نیکی کرنے پہ آتی ہے انسان گناہوں سے کبھی سکون نہیں پا سکتا اس کے اوپر آپ کو ایک لیکچر ریکمینڈ کروں گی جس کا نام شاید نیکی کی حقیقت دو سیریز میں آپ اس کو اگر اس کی ڈیٹیل سے سنیں گے انشاءاللہ یہ آیت تدبر میں بھی آئے گا تو آپ کے بہت سارے کانسیپٹس کلیئر ہوں گے آج امت مسلمہ کو جس چیز پہ کام کرنا ہے وہ کیا ہے کہ لوگوں کو بیسک سے شروع کروا کر آگے سے آگے دوسری چیزوں پر لے کر چلے بعض دفعہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں کو ٹوکتے ہیں نیل پالش کیوں لگائی یہ کیوں کیا اسی طرح سے کچھ اور چیزیں لیکن بعض دفعہ ان کے عقائد میں خرابی ہے لوگوں کو سموکنگ کرنے پہ ناراض کر دیتے ہیں یا ان سے کچھ بات کرتے ہیں لیکن وہ بندہ نماز بھی نہیں پڑھتا تو دعویٰ دینے والے کو دین کی بات دوسرے کو بتانے والے کو دین کی ترتیب کو سامنے رکھنا چاہیے یہی ہمارے دین کا حسن ہے اب اس سے اگلے حصے میں سورت بقرہ کے ہمیں اقسام بر دکھیں گی اور آپ دیکھیں گے کہ پورے انسانی معاملات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس حصے میں ہمیں یہ سکھا دیا کہ دین المعاملہ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ بس نماز روزہ کرو اللہ کے لیے باقی کام اپنی مرضی کے کرو تو آپ دیکھیے کہ یہاں سے اب جو آیتیں شروع ہوں گی آگے آپ دیکھیں گے کہیں قصاص کی بات ہے کہیں وصیت کی بات ہے کہیں حج کی باتیں ہیں کہیں اسی طرح سے طلاق کی اور عدت کی اور اسی طرح سے عورتوں کے خفیہ معاملات کی باتیں آ رہی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین جو ہے ایک مکمل طرز زندگی ہے ہم زندگی کے کسی گوشے کو دین سے دور نہیں کر سکتے آئیے دیکھتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا کیسے الحر بالحر والعبد بالعبد آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے غلام قاتل ہو تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے اور عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت سے قصاص لیا جائے दारे जाहिलियत में क्या होता था, एक किसी का कत्ल होता था तो उसके बदले में कबीलों के कबीले कत्ल कर देते थे, खुद कत्ल करते जवाब में गुलामों को कत्ल करा देते। तो अल्लाह ताला ने कहा नहीं, जो मारेगा वही मरेगा, दूसरा इसके ऊपर उसके जुर्म में नहीं मरेगा। हाँ, अगर किसी कातिल के साथ इसका भाई कुछ नरमी के लिए तैयार हो तो मारूफ तरीके के मुताबिक खून बहा का तस्फिया होना चाहिए और कातिल को लाजिम है कि रास्ती के साथ खून बहा दे दे। ज़ालिका तख़फ़ीफ़ु मिन रब्बिकुम व रहमा, ये तुम्हारे रब की तरफ से तख़फ़ीफ़ और रहमत है, इस पर भी जो ज्यादती करे इसके लिए दर्दनाक सजा है। अक्लो खिर्द रखने वालों, तुम्हारे लिए कसास में जिंदगी है। इस जुमले को हाईलाइट करें। आज वेस्ट में बस लोग इस्लामी सजाओं को वहशतनाक करार देते हैं और वो ये सोच लेते हैं कि इस्लाम बहुत सख्त रिलीजन है, हालांकि आप देखिए जहां भी इस्लाम को लागू करेंगे तो वहां से कत्ल और इस तरह के क्राइम सब खत्म हो जाते हैं, क्योंकि सजा का डर लोगों को गुनाह से रोक देता है। हमें अगर ये सोच मिल जाए कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों पे हमें पकड़ेगा तो हम कभी भी दुनिया में इस तरह से नहीं काम कर सकते खुल के गुनाहों के जिस तरह के अमूमन नजर आते हैं। फरमाया कि उम्मीद है कि तुम इस कानून की खिलाफ वर्जी से परहेज करोगे। तुम पर फर्ज किया गया कि जब तुम में से किसी की मौत का वक्त आए और वो अपने पीछे माल छोड़ रहा हो तो वालदैन और रिश्तेदारों के लिए मारूफ तरीके से वसीयत करे। देखिए ये है इस्लाम, जीते जी भी हमारे माल में दूसरों का हिस्सा है और मरने के बाद भी हिस्सा है। यहाँ वसीयत की एक इब्तदाई आयत बता दी कि आप किसी को भी कुछ देना चाहते हैं तो आप उसको दे सकते हैं, ये हक है मुत्तकी लोगों पर। फिर जिन्होंने वसीयत सुनी और बाद में इसको बदल डाला तो इसका गुनाह इन बदलने वालों पर होगा। अल्लाह ताला सब कुछ सुनता और जानता है। अलबत्ता जिसको अंदेशा हो कि ये वसीयत करने वाले ने जानते बूझते या अनजाने में कोई हक तलफी की है, यानी एक को ज्यादा दे दिया एक को कम दे दिया, और फिर मामले से ताल्लुक रखने वाले के दरमियान वो इस्लाह करे तो इस पर कुछ गुनाह नहीं, अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। बास लोग आप देखिए कि किसी की गलत वसीयत को सुनकर फिर उस पर अमल भी करते हैं। गलत किस्म किस तरह की होती है जिसमें हक तलफी है, मसलन कोई कहता है अच्छा जी ये सारी जायदाद मेरे एक ही बेटे को दे देना बाकियों को नहीं देना, तो बस दफा इस तरह की बातें गलत तरीके की होती हैं। कोई जाते जाते बच्चे का रिश्ता ऐसी जगह जोड़ जाता है कि जो लड़का दीन पे नहीं है, तो ऐसी तमाम चीजों को बदल दिया जाएगा। इसके तफसीली अहकाम सूरत निसा में आएंगे, यहां सिर्फ एक हल्की सी बात करके बता दिया कि देखो अल्लाह अल हादी है, दुनिया में तो तुम्हें मदद करता ही था लेकिन दुनिया से जाते जाते भी अल्लाह सुबहान तआला तुम्हारे लिए कवानीन दे रहा है, तो पता चला कि एक मोमिन की जिंदगी मौत तक अल्लाह के अहकामात के मुताबिक गुजरेगी। फिर जिन्होंने वसीयत सुनी और बाद में इसको बदल डाला तो इसका गुनाह इन बदलने वालों पर होगा। अल्लाह ताला सब कुछ सुनता और जानता है। अलबत्ता जिनको ये अंदेशा हो कि वसीयत करने वाले ने जानते बूझते या अनजाने में हक तलफी की है और फिर मामले से ताल्लुक रखने वालों के दरमियान वो इसलाह करे तो इस पर कुछ गुनाह नहीं, अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ। अब आपकी आयत आ गई है। आजकल सबके दिल दिमाग पे रमजान और रोजे, तो ये तीन आयत कुरान पाक का वाहिद मुकाम है जिसमें रोजे से मुतल्लिक बातों को डिस्कस किया गया। आइए इसको सुनते हैं। ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए, ऑप्शन नहीं है, फर्ज है। अरबों ने रोजे खत्म कर दिए हुए थे, अपनी बजाय घोड़ों को रोजे रखते थे। जब लूट मार के लिए निकलना होता तो कई कई दिन तक अपने घोड़े के मुंह पर एक इस तरह से ढांटा सा बांध देते थे और घोड़े को खाने को ना देते ताकि वो उनके काबू में आ जाए। इसी तरह से कुछ और तरीके अख्तियार किए तो अल्लाह ताला फरमाते हैं उम्मत मुस्लिमा बनना है तो रोजे रखने पड़ेंगे। रोजे के और तो बहुत सारे एंगल है लेकिन आज हमारे इस थीम के साथ जो मिलता है वो क्या है कि उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह ने इंसानियत की हिदायत के लिए भेजा और हिदायत की तड़प रखने वाले को जिंदगी में बहुत मुश्किल मराहल से गुजरना पड़ेगा। अगर नफ्स पे काबू नहीं होगा, अगर रूह के तकाजे पूरे नहीं किए होंगे तो ये काम नहीं होगा। आप सोचिए, हसास लोग, सेंसिटिव लोग, आई एम सो सेंसिटिव, मुझे बड़ी जल्दी कुछ होता है, वो कभी अल्लाह के दीन के काम नहीं करते। ये काम वो लोग करते हैं जो जिसको आप कहना चाहिए कि सख्त जान होते हैं। उम्मत मुस्लिमा जितना अपने आप को और अपनी नस्लों को ऐश कोश जिंदगी में डालती जाएगी उतना दुश्मन उसके ऊपर गालिब होते जाएंगे। तो रोजे रखकर हमने अपने नफ्स पर काबू पाना है इंशाल्लाह। इससे तवक्को है कि तुम में तकवा की सिफत पैदा होगी। तकवा क्या होता है? जो इंसान को सेल्फ कंट्रोल सिखाता है, सब्र सिखाता है, अल्लाह ताला की मौजूदगी का एहसास होता है। और डरते क्यों हो? चंद मुकर्रर दिनों के रोजे हैं। मेरा लग किसी महीने में इतना कैलेंडर गिना नहीं जाता जितना रमजान में गिनते हैं। एक हो गया, दो हो गया, हाँ, कोई कहता है एक हो गया, कोई कहता है 29 रह गए, बल्कि वो कहते हैं 28 रह गए। दिल से ख्वाहिश होती है कि 29 हो, तो अल्लाह ताला कहते हैं क्या हुआ? देखिए, इसमें खबर भी है और हुक्म भी है। खबर क्या है कि कोई बात नहीं, चंद दिन की बात है। हुक्म यह है कि अगर कोई रोजा छूटा तो उसको पूरा करना पड़ेगा। अगर तुम में से कोई बीमार हो या सफर पर हो तो दूसरे दिनों में इतनी ही तादाद पूरी कर ले, और जो लोग रोजा रखने की कुदरत रखते हो फिर भी ना रखें तो वो फिदिया दे दें। ये क्या बात हुई? तो लिख लीजिए, ये इब्तदाई हुक्म था। अल्लाह ताला का दीन लोगों को रियायत देता है। शुरू में रोजे कैसे फर्ज हुए थे? कि रोजा रख लो या उसका फिदिया दे दो। अब कुछ लोग थे जो रोजा रखना चाहते थे, वो रोजा रख लेते थे, जो नहीं रखते फिर वो दूसरे को फिदिया दे देते। फिर बाद में जब आहिस्ता आहिस्ता आदत हो गई तो वो फिदिये वाला मामला सिर्फ मजबूरियों में रख दिया गया, आम हालात में सबको रोजा रखना पड़ा। आज आप भी अपने बच्चों को इसी तरह से आदत डाल सकते हैं, बेटा रख लो, जहां तक रख सके रखना, फिर खोल देना। बीमारों को भी ऐसे ही कहा करें। अच्छा, आप हार्ट पेशेंट है, आप उठिए, सहरी खाइए, नियत कर ले, तो आप बस कह दें, अल्लाह जहां मेरी दवाई का वक्त आएगा मैं तोड़ लूंगी, जहां मेरा दिल घटने लगेगा मैं तोड़ लूंगी। शुगर पेशेंट्स हैं, उनको भी ऐसे करें। आप अनयूजुअल किस्म की चेंजेस उनकी तबीयत में देखेंगी कि एक रोजा नहीं उनको तोड़ना पड़ता है। ठीक है, कोई अगर ऐसी बीमारी है जिसके बगैर नहीं जी सकते तो वो तोड़ सकते हैं, अल्लाह ने रुख्सत भी दी है, लेकिन डोंट गिव अप। आज हम बहुत जल्दी गिव अप जब कर जाते हैं ना तो फिर कुदरत खत्म हो जाती है। कफारा कितना है? एक रोजे का फिदिया एक मिस्कीन को खाना खिलाना है। जो अपनी खुशी से कुछ ज्यादा भलाई करे तो ये उसके लिए बेहतर है। यानी नाप तोल के नेकियां ना करो, गिन गिन के अल्लाह को पैसे ना दिया करो कि अच्छा कितना दूं, एक वक्त का खाना, दो का, क्या जितना मर्जी दे दो, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर कोई बोझ नहीं डाला। लेकिन अगर तुम समझो तो तुम्हारे हक में यही अच्छा है कि रोजा रखो। इशारा है कि बात पे बात ना छोड़ो। देखिए, आज छोड़ देंगे, कोई हर्ज नहीं, लेकिन बाद में रखना बहुत मुश्किल होगा। जब रमजान होते हैं 30 रोजे हम रख लेते हैं क्योंकि सब रख रहे हैं, और ईद के बाद 6 रोजे शवाल के मुश्किल हो जाते हैं। शाबान में शायद ही कोई रोजा रखा हो क्योंकि दूसरे नहीं रखते, तो वही छोड़े जिसको यकीन है कि वो बाद में रख लेगा। शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो इंसानों के लिए सरासर हिदायत है और ऐसी वाज़े तालीमात पर मुश्तमिल है जो राह रास्त दिखाने वाली और हक को बातिल का फर्क खोल कर रख देने वाली है। बस अब से जो शख्स इस महीने को पाए, इसको लाजिम है कि इस पूरे महीने के रोजे रखे, और जो कोई मरीज हो या सफर पर हो तो वो दूसरे दिनों में रोजों की तादाद पूरी करे। रमजान का असल हुसन कुरान है, और कुरान रोजे की हालत में जो समझ आता है ये अब आपको कल पता चलेगा इंशाअल्लाह ताला। कितने लोग हैं जो सोच रहे हैं कि रोजा रख के मैं नहीं आ सकती? मेरा लिए वो आज भी नहीं आए। चलिए, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह तुम्हारे साथ नरमी करना चाहता है, सख्ती करना नहीं चाहता, इसलिए ये तरीका तुम्हें बताया जा रहा है ताकि तुम रोजों की तादाद पूरी कर सको, और जिस हिदायत से अल्लाह ने तुम्हें सरफराज किया इस पर अल्लाह की किब्रियाई का इजहार और एतराफ करो और शुक्रगुजार बनो। यानी रोजे रखने के बाद ईद की तकबीरात भी पढ़ो। हम में से कितने लोग हैं जो दिल से शुक्र करते हैं कि अल्लाह तूने मुझे मुसलमान बनाया और उसके बाद तूने फिर मुझे रोजे रखने वाला बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह, कितना खूबसूरत दीन है। मैं सोचती हूँ अगर दूसरे लोगों को सिर्फ इस दीन के बाद जो इंसान की तबीयत में खूब सुकून और खुशी आती है वो पता लग जाए, तो आज वो सारे जो डिप्रेशन के मरीज और ड्रग्स लेने वाले हैं वो इस सोच के साथ इस्लाम में आ जाएं कि ये दीन है, सुकून है, फितरत का दीन है। फिर उसके बाद देखिए कि रोजे की हालत में एक और चीज, वो है दुआ। लोगों ने अपने माबूद बनाए और उनके पास पहुंचने से पहले बहुत कुछ करना पड़ता है, उनसे पहले इजाजतें लेनी पड़ती हैं, उनसे टाइम लेने पड़ते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं नहीं, मैं हूं तो बादशाह, मालिक अल मुल्क हूं, लेकिन मेरे पास आने के लिए कोई अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं, कोई वक्त का इंतखाब नहीं, बल्कि व इजा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीब दावत अद्दाई ज़ादान फलयस्तजीबू ली वलयूमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। अरे नबी, मेरे बंदे अगर तुमसे मेरे बारे में पूछें तो इनको बता दो कि मैं इनसे करीब ही हूं। अल्लाह का नाम है अल करीब। कितने लोग हैं जो अल्लाह को करीब समझते हैं? सूरह काफ में भी हम पढ़ेंगे, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। शाहरख से भी अल्लाह करीब है, अल्लाह को दूर ना समझे। जब इंसान अल्लाह को दूर समझता है ना, एक तो मायूस हो जाता है और एक गुनाहगार हो जाता है। वो कहता है अल्लाह को तो मेरे इस गुनाह की खबर ही नहीं होनी। पुकारने वाला जब मुझे पुकारता मैं इसकी पुकार सुनता हूँ और जवाब देता हूँ। क्यों? क्योंकि वो खालिक है। इंसानों में क्या कोई हर वक्त अवेलेबल हो सकता है? नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। इंसान की अपनी ज़रूरतें हैं, इंसान सो सकता है, इंसान थका हो सकता है। आप अपने बच्चे को हर वक्त अवेलेबल नहीं है, लेकिन अल्लाह की ज़ात इन तमाम ज़रूरियात से खाली है। लिहाजा वो रात को दिन को जब कोई पुकारे, इसमें इतना खूबसूरत ग्रामर का हुसन है कि जब कभी आप तफसील से इनको सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको इन आयतों में से इतना कुछ मिल जाएगा कि अल्लाह किस तरह से करीब है। करो क्या, हम सब चाहते हैं ना कि मेरी दुआएं कबूल हों। तो कहा बस इनको चाहिए कि मेरी दावत पर लब्बैक कहें। ये कौन सी दावत है? वही जो इब्राहिम को दी थी, इस काल रब्बुहु अस्लिम काल अस्लम तुली रब्बिल आलमीन। हम रब की माने, रब हमारी मानेगा। और मुझ पर ईमान लाएं, किस बात का? कि मेरे सिवा दुआओं को कोई सुनने वाला नहीं। ये बात तुम इनको बता दो, शायद कि वो राह रास्त वाले तुम्हारे लिए रोजों की रातों में रात तुम्हारे लिए रोजों के जमाने में रातों को अपनी बीवियों के पास जाना हलाल कर दिया। इब्तदाई दौर में रोजे में क्या कैफियत थी? सिर्फ मगरिब से इशा के बीच में खा पी भी सकते थे और कोई भी ख्वाहिश थी वो पूरी कर सकते थे। जूं ही इशा का टाइम शुरू हुआ सब पाबंदियां लग गईं, यानी रात भी रोजे से ही होते थे आप ये कह लें, या फिर अगर इशा से पहले भी सो गए तो भी यही पाबंदी थी। लेकिन एक सहाबी थे कैस बिन सुरमा, उनकी वजह से अल्लाह ने ये कमी कर दी। जो रोजे से आए घर में थे, बीवी से पूछा कुछ है? कहने लगी है तो नहीं, मैं हमसाए से पूछती हूँ। इतने में वो गई और इनकी आंख लग गई। आंख लगने का मतलब ये था कि अगला रोजा शुरू हो गया। अगले दिन किस खेतों में काम करते हुए थकन और भूख की वजह से निडाल हुए, बेहोश हो गए। जब ये मामला पेश हुआ तो अल्लाह ताला ने ये आयतें नाजिल कर दी। एक सहाबी के लिए अल्लाह ने कुरान की आयतें बदल दी और कामयाब तुम रातों को खा पी सकते हो। और जिसको भी रोजा मुश्किल लगे उसको ये आयत बताएं कि सोचो अगर रात का भी रोजा होता। कुछ लोग तो जो दिन में रोजा रखना होता है सारी रात खाते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं ताकि स्टोरेज तो हो जाए। लेकिन आप देखिए कि अल्लाह ताला ने हम पे कितना रहम किया। दीने इस्लाम या दीन मोहम्मदी, इसमें बहुत सहूलतें हैं। पहले दीन के पहले अदियान मुश्किल थे, फिर इसके बाद देखिए शोहर बीवी के ताल्लुक के लिए इतना खूबसूरत जुमला है कि दुनिया का कोई फिक्शन, कोई फिल्म, कोई नावल, कोई डाइजेस्ट इसका मुकाबला नहीं कर सकता। और वो क्या? वो तुम्हारे लिए लिबास है और तुम के लिए। जिस्म और लिबास का ताल्लुक क्या होता है? एक दूसरे के ऐप को छुपाते हैं। हमारे जिस्म पे कोई ऐप होगा तो लिबास हमारा छुपाएगा। इसी तरह शौहर और बीवी को एक दूसरे के हमराज होना चाहिए। हर इंसान के अंदर कुछ शॉर्टकमिंग्स भी होती हैं, कमियां भी होती हैं। बीवियों को शौहरों के और शौहरों को बीवियों के ऐप नहीं बताने चाहिए। फिर इसी तरह देखिए कि लिबास और जिस्म बराबर होता है। हम अपने से छोटे कपड़े पहने तो हम कंफर्टेबल नहीं होंगे। इसी तरह जब रिश्ते देखें तो कफ देखिए, बराबरी का ताल्लुक होना चाहिए, हम मिजाज होने चाहिए। फिर इसी तरह आप देखिए कि लिबास पहनकर इंसान खूबसूरत लगता है, बेलिबास इंसान क्या है? गोश्त का पहाड़ है। इसी तरह शादीशुदा इंसान खूबसूरत लगता है। शौहर और बीवी को लिबास और जिस्म की तरह साथ रहना चाहिए, बिला वजह एक दूसरे से दूर नहीं रहना चाहिए। बाज़ दफ़ा कमाई के लिए और बाज़ दफ़ा और मजबूरियों की खातिर कई कई साल तक दूरियां होती हैं, और इस पे और भी बहुत कुछ हम गौर व फिक्र करते होते हैं। लेकिन इसको सुनते वक्त अल्लाह का दिल की गहराई से शुक्र अदा करें कि उसने निकाह जैसा बंधन ऐसे रखा कि जिसके साथ फिर इंसान इस तरह बन जाता है कि दुनिया का हर रिश्ता पीछे हो जाता है। इसके बरक्स अगर आप दूसरों को देखिए, लिविंग टुगेदर, दिल आज खुश है कल खुश नहीं है, और आज इस तरफ से और आज उधर से, और इस तरह से आज वेस्ट ने औरत को किस तरह कठपुतली बना दिया। अल्लाह ताला हमें इस्लाम की कदर की तौफीक दे। फरमाए कि अल्लाह को मालूम हो गया है क्या कि तुम चुपके चुपके अपने आप से खयानत कर रहे थे, मगर इसने तुम्हारा कसूर माफ कर दिया और तुमसे दरगुजर फरमाया। अब तुम अपनी बीवियों के साथ शबबाशी करो और जो लुत्फ अल्लाह ने तुम्हारे लिए जायज कर दिए इसको हासिल करो। नीस रातों को खाओ पियो यहां तक कि तुमको स्याही शब की धारी से सुबह सुबह की धारी नुमाया नजर आने लगे। सुम्माति मुस्याम इलल लैल, ये है रोजे का औकात। पूरे कुरान में रोजा कब से कब तक रखना है ये आधा जुमला है। सुम्माति मुस्याम इलल लैल, तब ये सब काम छोड़कर रात तक अपना रोजा पूरा करो। आप कहेंगे हम रात तक तो नहीं करते, हम तो मगरिब तक करते हैं। तो अरबी जुबान में रात का आगाज मगरिब की नमाज से हो जाता है। वला तुबाशिरूहुन्ना वअन्तुम आकिफून, और जब तुम मस्जिदों में इतिकाफ की हालत में हो اپنی بیویوں سے تعلق قائم نہ کرو، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکام لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے۔ اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ روا طریقے سے کھاؤ، اور نہ حاکموں کے آگے لے جاؤ اس غرض سے کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کچھ حصہ ارادے کے ساتھ ظلم کے طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے۔ نوٹ کیا آپ نے؟ روزے کی آیتوں کے فوراً بعد رشوت اور مال ناحق کی بات کیوں آئی؟ یہ ہے روزے کا مقصد۔ روزہ ہمیں ایک ذمہ دار انسان بناتا ہے۔ روزہ یہ سکھاتا ہے کہ ایک مہینہ تم نے اللہ کے کہنے پہ حلال کو چھوڑا ہے، اب 11 مہینے حرام کو چھوڑنا ہے۔ روزے کا ایک اثر ہر انسان کو اپنے اوپر محسوس کرنا چاہیے کہ نافرمانیاں اور ناجائز چیزیں اس کی زندگی سے نکل جائیں اور اس کی جگہ پہ اللہ کی رضا آ جائے۔ اس کے بعد ایک اور سوال تھا صحابہ کا کہ یہ چاند کیا ہے؟ اب آ جائیں تو آپ تو فوراً بتا دیں گے چاند ادھر ہے، اتنی دور ہے، اتنا بڑا ہے، ادھر گیس نہیں، ادھر پانی نہیں، سائنس نے ترقی کی اور ہم نے ایسی تصویریں بھی کھینچ لی۔ صحابہ کو نہیں پتا تھا اس وقت، جو چیز وہ نہیں دیکھتے پھر اللہ کے نبی سے اس خیال سے پوچھتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کبھی بڑا چاند ہے، کبھی چھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی بات قرآن میں کھول دی۔ کیا؟ یسألونک عن الأهلة قل هي مواقیت للناس والحج، لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کا تعین ہے اور حج کی علامتیں ہیں، نیز ان سے کہو کہ یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو، نیکی تو اصل میں اس شخص کی ہے جو اللہ کی ناراضگی سے بچے، پس تم اپنے گھروں میں دروازوں سے آیا کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، شاید تمہیں فلاح نصیب ہو۔ عرب لوگ جب احرام باندھ لیتے تھے حج عمرے کا، ایک دفعہ جب گھر سے نکل جاتے بالفرض کوئی چیز یاد آتی، جیسا عموماً آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں نا، گھر سے نکلتے نا 4 دفعہ واپس آتے ہیں، او بھول گئی، او بچہ ہی بھول گئی، اور یہ گھر رہ گیا، وہ رہ گیا، اچھا بھائی آ جاؤ سیدھا، کہتے تھے نانا۔ دو وجوہات تھی، ایک تو کہتے تھے کہ عمرے کی نیت سے نکلے تھے تو بغیر عمرہ کی اندر جا رہے ہیں، خام خواہ تقویٰ کا ایک عجیب سا انداز، اور دوسرا وہ کیا سوچتے تھے کہ یہ بدشگونی ہوگی، پھر جانا تو پڑتا مجبوری، تو سیدھے دروازے سے جانے کے پیچھے سے جا کے چھت کے راستے کود کے آتے تھے۔ اللہ نے منع کیا کہ مسلمانوں ڈھنگ کے کام کرو۔ اصل میں اس میں بھی امت مسلمہ کے لیے ایک بہت سبق ہے۔ بعض دفعہ ہم جذبات میں آ کر ریئیکشن میں دکھانے کے لیے یا اپنے آپ کو بہت بڑا کرنے کے لیے الٹے سیدھے کام کرتے ہیں، کبھی بھی اپنا مذاق نہیں بنوانا چاہیے، سیدھے کام کرو، ڈھنگ کے کام کرو۔ دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم دوسروں کی نظروں میں تماشا بن جائیں اور مذاق بن جائیں، لہٰذا اسی طرح سے فرمایا کہ نیکی کیا کہ اللہ کی ناراضگی سے بچو، تو کاموں کو ٹھیک طریقے سے کرنا عقل مندی کی علامت ہے۔ اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، ہاں مگر زیادتی نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہ کچھ آیات قتال کے بارے میں ہے۔ آج اسلام پر ایک بہت بڑا الزام ہے اور اسلام کو ٹیررزم کا نام دیا جاتا ہے۔ آپ یہ ساری آیات سنیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اپنے دل سے بھی پوچھئے کہ کیا اسلام جو دشمنوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں کیا سکھا رہا ہے، زیادتی نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک کسی کافر کو جواب نہیں دیا ظلم اور بربریت کا، یہ کہتے رہے کف ویدیکم، کیونکہ ابھی ہم تھوڑے ہیں، ابھی ہماری وہ طاقت نہیں ہے۔ مدینہ میں چلے گئے، 1 سال تک کچھ نہیں ہوا، غزوہ بدر کی چھیڑ خانی شروع ہوئی، اس کے بعد حکم مل گیا یا اس کے قریب ملا، یعنی مدینہ میں جا کر پہلی دفعہ وہ اجازت ملی، وَأُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ، جس سورت حج میں ہم پڑھیں گے۔ کیا پتہ چلا کہ ہمارا دین جنگ و جدل والا دین نہیں ہے، لیکن جب کوئی آپ کو مارنے آئے تو آپ کیا کریں گے؟ مار لو پھر، چلو ترن والا کھا لو۔ کیا دنیا میں کبھی آپ نے کوئی کمانڈر ایسا دیکھا کہ اپنے فوجیوں سے کہ خبردار دشمن کو مارا، دیکھو ان کا خون نکلے گا تو ڈیٹول لے کے جانا، پٹی باندھنا اور ان کو ڈاکٹر پہ لے جانا؟ ڈز اٹ میک اینی سینس؟ جب اپنی دنیا میں یہ بات سمجھ نہیں آتی تو اسلام اگر اپنا دفاع کرتا ہے یا اگر کوئی اس کو آنکھیں دکھائے تو وہ اس کو آگے سے پوچھے بھائی کیا ارادہ ہے، تو کیا یہ بری بات ہے؟ یاد رکھیں، سر اٹھا کے جینا سیکھیں۔ جب تک ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہوگا کہ اسلام پیس کا دین ہے، اسلام ریلیجن کیسا ہے کہ جو دوسروں کے ساتھ لڑنا کٹنا نہیں سکھاتا بلکہ ان کے ساتھ معاملہ فہمی سکھاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اسلام پھیلایا وہ تلوار سے نہیں پھیلایا تھا، بلکہ آپ نے اخلاق کے ساتھ بات کی تھی، تو کبھی بھی اس طرح کے کام کر کے دوسروں کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ لاجیکلی بات کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے زیادتی نہ کرو. عورتوں پہ ہاتھ اسلام نہیں اٹھانے دیتا، بچوں پہ نہیں اٹھانے دیتا، بوڑھوں پہ نہیں اٹھانے دیتا، گرجا گھروں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے عبادت کریں ان کو نہیں اٹھانے دیتا. صرف جو فوجی اسلام کو اور مسلمانوں کو ختم کرنے آگے، اب ان کو کیا کرو؟ دیکھیے ایک مچھر بھی مارے یا کاکروچ کو مارے تو وہ بھی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتا ہے نا، تو کیا مسلمان کے آؤ تو مجھے مار لو؟ تو یہ ون سائیڈڈ قسم کے رول سے دنیا میں کبھی بھی امن نہیں آتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے. اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا. یعنی مکہ والوں کا اپنے کام بھول گئے کہ ان کی زیادتیوں سے ایک نبی ملک چھوڑنے پہ یا ان کا شہر چھوڑنے پہ مجبور ہو گیا، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو فتنہ بناتے ہیں. اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑے تم بھی نہ لڑو، مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چکیں تو تم بھی بے تکلف ان کو مارو. کیسے کافروں کی یہی سزا ہے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ. یہ آیت 193 ہائی لائٹ کیجئے. اسلام کا نظریہ جہاد بڑے خوبصورت طریقے سے اس آیت سے سمجھ آتا ہے. تم ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا کسی اور پر ہاتھ اٹھانا پسندیدہ نہیں. دیکھیں یہاں فتنے کی بات ہے. کسی بھی جگہ لڑائی کرنا کب لازم ہو جاتا ہے؟ نمبر ایک، وہاں پرسیکویشن ہو. فتنہ کیا ہے؟ لوگوں کو اسلام پر عمل کرنے سے روکا جائے. کوئی ایسا ظالم حکمران آ جاتا ہے کہ مسلمانوں کو مرواتا ہے، جیسے سورہ بروج میں آپ پڑھیں گے کہ بھٹیاں لوہے یعنی آگ کی ڈچز کھود کے اس میں مسلمانوں کو جلایا. ایسے وقت میں بھی مسلمانوں پہ لازم ہے کہ وہ اپنی جان بچائیں. اسی طرح دوسری صورت کیا ہے کہ جب کوئی دشمن اللہ یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنے سے روک لے. یعنی آپ دیکھیں نا کہ جب کوئی مسلمانوں کو ان کے دین پہ عمل نہ کرنے دے تو آپ مقابلہ کریں گے. حتی ویقون الدین للہ، یہ دوسری وجہ کہ ساری دنیا میں جب تک لا الہ الا اللہ کے جھنڈے نہ لگ جائیں. تھوڑی سی بات سمجھ لیں، کسی بھی ملک میں آپ جاتے ہیں تو وہاں اسی ملک کے جھنڈے ہوتے ہیں نا. چھوٹا سے چھوٹا ملک دنیا کا شاید برونائی ہوگا، اس کا بھی اپنا جھنڈا ہے. اب اوور آل یہ پوری دنیا کس کی ہے؟ للہ ما فی السماواتی. تو پوری دنیا پہ کس کے نام کا جھنڈا ہو؟ یہ ہے یکون الدین للہ، اس کے لیے امن کے ساتھ. اور جب لوگ دعویٰ دیتے ہیں، جب لوگ دین کو عام کرتے ہیں تو تلواروں کے ساتھ جھنڈے اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اسی لیے فرمایا فَإِنْ تَخَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا کسی پر ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں. یعنی اس مسلمان بے گناہ شہریوں کو نہیں مارتا. آج اس کے برعکس دیکھیے ذرا جو جنگوں کے طریقے ہیں، بچے سکولوں میں گئے ہیں پتہ نہیں واپس آئیں گے کہ نہیں، عورتیں بچے بوڑھے سب اس کا شکار ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ آج وہ مینرز ہی نہیں ہے جنگوں کے. پہلے دور میں جنگیں جب لڑی جاتی تھی تو مینرز ہوتے تھے، آج تو اللہ معاف کرے کہ ایسی جنگیں ہیں کہ جس میں گھروں میں بیٹھے لوگ بھی اتنے ہی انسیکیور ہیں جتنے جنگوں پہ گئے ہوئے ہیں. تو لہٰذا اسلام کا نظریہ اگر آپ پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو اس میں سراسر انصاف دکھے گا. الشہر الحرام، الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص. ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا. پس جو تم پر ہاتھ اٹھائے تو تم بھی اس پر ہاتھ اٹھاؤ. البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود کو توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں. نوٹ کریں، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہاں ایک بات نوٹ کیجئے کہ جو رب دشمنوں پہ زیادتی کرنے کو پسند نہیں فرما رہا، کیا وہ اپنوں پہ، پیاروں پہ، رشتہ داروں پہ زیادتی کرنے کو پسند کرے گا؟ بعض جب آپ دیکھیے کہ خون کے رشتے ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ساس بہو کا رشتہ تو ویسے ہی بدنام ہے، تو کبھی کسی پہ زیادتی نہ کریں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول یاد آ گیا، کہتے ہیں کہ قیامت کے دن میں مظلوم بن کے آؤں، یعنی کسی نے میرے پہ ظلم کیا، مجھے یہ پسند ہے، لیکن یہ میں گوارا نہیں کر سکتا کہ میں ظالم بن کر آؤں. تو کبھی کوئی آپ پہ زیادتی کریں تو کہیں اللہ تیرا شکر ہے، میں زیادتی کرنے والوں میں تو نہیں ہوں، سہنے والوں میں ہوں. اللہ تعالیٰ تو ان کو بھی ہدایت دے دے. اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے. اس آیت میں کیا میسج ہے؟ جب مسلمان اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ہاتھ روک لیتے ہیں وہ ہلاک ہو جاتے ہیں. दुश्मनों को पता चल जाता है ये एक एक शादी पे लाखों करोड़ों लगा देंगे, लेकिन अल्लाह के नाम पर ये चंद सौ भी नहीं लगा सकते। अमूमी तौर पर याद रखिए, जब लोगों के दिल में अल्लाह की कदर कम हो जाती है ना, तो अल्लाह के दीन की भी कम हो जाती है। दुनियावी ज़रूरियात, शौक और ख्वाहिशात पूरा करने के लिए हज़ारों लगाएंगे, और दीन के नाम पर, दीन की नशर इशात के लिए या अपनी ही ज़ात पे कुछ लगाना पड़े तो सबसे ज़्यादा उस वक़्त इंसान को ख्याल आता है कि इतना लेने की ज़रूरत क्या है। तो जब मुसलमान खर्च नहीं करेंगे, आज क्या हो रहा है? आपको पता है कि मुसलमान इस्लाम में 2.5% माल पे ज़कात देते हैं, अपने माल पे 2.5% ज़कात देते हैं। हालांकि आप देखिए कि गैर मुस्लिम 25% अपने माल का चर्चिस को देते हैं। तो लिहाजा अपनी ज़ात पे खर्च करते वक्त इंसान देखे कि मैं अल्लाह के दीन पर भी इसी तरह खुशी से खर्च कर सकता हूँ। अल्लाह की खुशनुदी के लिए जब जब हज और उम्रे की नीयत करो तो इसे पूरा करो, और अगर कहीं घिर जाओ तो जो कुर्बानी मुयस्सर आए अल्लाह की जनाब में पेश करो, और अपने सर न मुंडो जब तक कि कुर्बानी अपनी जगह पे न पहुंच जाए। फमन काना मिनकुम मरीदन, मगर जो शख्स मरीज हो या जिसके सर में कोई तकलीफ हो और इस बिना पर अपना सर मुंडवा ले, तो इसे चाहिए कि फिदिये के तौर पर रोजे रखे या सदका दे या कुर्बानी करे। फिर अगर तुम्हें अमन नसीब हो जाए और तुम हज से पहले मक्का पहुंच जाओ, तो जो शख्स तुम में से हज का जमाना आने तक उम्रे का फायदा उठाए वो हस्बे मकदूर कुर्बानी दे, और अगर कुर्बानी मुयस्सर ना हो तो 3 रोजे हज के जमाने में और 7 घर पहुंच कर इसी तरह पूरे 10 रोजे रख ले। ये रियायत इन लोगों के लिए जिनके घर बार मस्जिद हराम के करीब ना हो। आप देख रहे हैं कि ये हज और उम्रे के कुछ मसाइल है जो इस वक्त तो हमें जरूरत नहीं है, जब भी कभी जाना हो। इस पर एक बहुत ही खूबसूरत किताब इकबाल केलानी साहब की, हज और के मसाइल, बहुत डिटेल से सारे मसाइल मौजूद हैं। आप वो बुक साथ रख लें, उसको पढ़ लें या उसकी ऑडियो सुन लें, इंशाल्लाह ये सारे मसाइल आपको वहां समझ आ जाएंगे। फिर फरमाया वत्तकुल्लाह वालमु अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, हम की खिलाफ वर्जी से बचो और खूब जान लो कि अल्लाह ताला सख्त सजा देने वाला है। हज के महीने सबको मालूम है, आपको मालूम है कब होता है हज? वो तो जिलहज है ना, तो उससे पहले कितने? जी, उससे पहले निकल जाते थे। देखिए, ज़िलक़ादा, ज़िलहज से पहला कौन सा महीना होता है? ज़िलक़ादा। चलिए, हज के महीने सबको मालूम है। जो शख्स इन मुकर्रर महीनों में हज की नियत करे, इसे खबरदार रहना चाहिए कि हज के दौरान में इसे कोई शहवानी फेल, कोई बदअमली, कोई लड़ाई झगड़े की बात सरजत ना हो, और जो नेक काम तुम करोगे वो अल्लाह के इल्म में होगा। क्यों अल्लाह ने ये मना कर दिए? देखिए, जैसे रोजे में जायज ताल्लुक भी नाजायज हो जाता है ना, तो एहराम की हालत में भी ये सारे ताल्लुकात नाजायज होते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला आजमाना चाहते हैं, ट्रेनिंग होती है, तरबियत है कि इनको किसी वक्त रोकें ताकि जब कभी रुकना पड़े तो इनको मुश्किल ना लगे। सफरे हज के लिए ज़ादे राह साथ ले लो, और सबसे बेहतर ज़ादे राह परहेजगारी है। हम साथ क्या लेके जाते हैं? नए कपड़े, नए जूते, सूटकेसेस। हाँ, अल्लाह ताला कहते हैं तकवा लेकर जाओ। क्यों? तकवा ही वक्त पड़ने पे सबर में बदलेगा, तकवा वक्त पड़ने पे कनात पे बदलेगा। जितना हज और उम्रे में सबर की जरूरत होती है, उतनी तो कभी भी नहीं होती। वो हस्बैंड वाइफ जो कभी नहीं लड़े वो भी वहां लड़ते देखेंगे, क्योंकि मुसलसल सफर है, थकन है, भूख है, प्यास है। और आप देखिए, हज के सफर में और कुछ भी नहीं है, कोई लंबे चौड़े वजीफे नहीं है, कोई लंबी नमाजें नहीं है, कोई कुछ भी नहीं, सिर्फ सब्र है। अल्लाह दिखाना चाहता है टेंटों में भी रह के देखो, फिर वहां याद करो कि इस टेंट में भी रह सकती हो ना। 4 जोड़े लेके जाते हैं, पूरा महीना गुजार के आ जाते हैं, यहाँ आते ही क्या हो जाता है, फिर हमारा गुजारा ही कोई नहीं होता। तो ये हज का सबक ये है कि आखिरत के सफर को याद करो। अगर आप देखिए तो हज को जरा किसी मरने वाले के सफर से टैली करें, कोई मरता है तो उसको नहलाते हैं, हज पे जाने वाला भी गुसल करता है, उधर सफेद कफन पहनाते हैं, इधर सफेद एहराम पहनता है, इधर भी चंद चार लोगों के कंधों पे छोड़ के आते हैं उसको कब्रिस्तान, उधर हाजियों को फूल पहना कर एयरपोर्ट पे छोड़ आते हैं। इधर से जब वो निकलते हैं जहाज में गए तो हमारी नजरों से ओझल हुए, लेकिन दूसरी तरफ खुल गए। आज हम इधर मुर्दे को दफन करते हैं, वो दूसरी जहान में खुल जाता है। अगर एक हज हम ऐसा कर लेना या उमरा कि जिसमें हम सफरे आखरत को याद करें, तो यकीन करें कि हमारे दिल की दुनिया बदल जाए। इसी तरह एक दिन हम इस दुनिया से चले जाएंगे। पस है होशमंदो, मेरी नाफरमानी से बचो, हर इबादत के बाद देखिए तकवा। इबादत सिखाती है कि अल्लाह की नाफरमानियां ना करो। लैसा अलैकुम जुनाहुन तबतगू फजलम मिन रब्बिकुम, और अगर हज के साथ साथ तुम अपने रब का फजल भी तलाश करते जाओ तो इसमें कोई मज़ायका नहीं। फिर जब अरफात से चलो तो मशरे हराम यानी मुजदलिफा के पास ठहर कर अल्लाह को याद करो, और इस तरह याद करो जिसकी हिदायत इसने तुमको दी है, वरना इससे पहले तो तुम लोग भटके हुए थे। फिर जहां से और सब लोग पलटते हैं तुम भी वहीं से पलट जाओ। अरबों की आदत क्या थी कि जब उमरे या हज के लिए जाते तो अरफात के मैदान में जाते और वहाँ रात बसर करते, अगले दिन तो वहाँ बैठ के महफिलें सजाते और अपने बुजुर्गों के किस्से, कहानियाँ, बड़ाइयाँ बयान करना, कसीदे बयान करना फख्र करते थे। मेरा बाप ये था, मेरा वो था, यानी हज में जाकर भी अल्लाह को याद करने की बजाय अपनों को याद करते थे। और जब आपने देखा है कि रिश्तेदारों के साथ इंसान बैठता है तो बुराइयां भी होती हैं, गिबतें भी होती हैं। जैसे बाज़ लोग शादियों के नाम पे मिलते हैं लेकिन सारी सारी रात बैठकर फिर दूसरों की बुराइयां करते हैं, अल्लाह ताला ने मना कर दिया। कहा ऐसा हज अल्लाह को नहीं पसंद कि तुम वहां जाकर अपनी बड़ाई में हो। और आप सोचिए कि जब एक इंसान शऊर के साथ हज कर लेता है ना, तो उसके दिल से अपनी बड़ाई निकल जाती है, अपने खानदान और अपने इंसानों की बड़ाई तो फिर बिल्कुल ही एक दूसरी बात है। तो बिल्कुल इस तरह से यहाँ से हमें सबक क्या मिलता है कि जब कभी ऐसा मौका मिले, जब आपको इबादत करने का मौका मिले, तो वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहिए। फालतू वक्त बातों में करने की बजाय आप उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लीजिए ताकि आपकी नेकियां बढ़ें। अब रमज़ान जो हमारे सर हमारे साथ, अगर हम रमज़ान के बारे में देखें तो इसकी एक एक घड़ी बड़ी कीमती है। नियत कर लीजिए इस पूरे रमज़ान में मैंने कोई गीबत नहीं करनी, मैंने एक मिनट भी ज़ाया नहीं करना, मैंने किसी के साथ कोई ऐसा बर्ताव नहीं करना जो बाद में मुझे शर्मिंदा करे। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि अल्लाह ताला आपके लिए आसान करेगा। फिर फरमाए वस्तग़फिरुल्लाह, और वहीं से पलटो जहां से लोग पलटते हैं, और अल्लाह से माफी चाहो, यकीनन वो माफ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। फिर जब अपने हज के अरकान अदा कर चुको तो जिस तरह पहले अपने आबाओ अजदाद का जिक्र करते थे इसी तरह अब अल्लाह का जिक्र करो, बल्कि इससे भी बढ़ के। अल्लाह को याद करने वाले लोगों में भी बहुत फर्क है। कैसे? इनमें कोई तो ऐसा है जो कहता है, ऐ हमारे रब हमें दुनिया ही में सब कुछ दे दे। आप देखिए अक्सर लोग हज और उमरे पे जाते हैं सिर्फ दुनिया की दुआएं मांग के आ जाते हैं। कुछ तो दिल में नियतें लेके जाते हैं कि इस दफा अल्लाह से ये लेके आना है। ठीक है, मोहब्बत की बात और है, लेकिन सिर्फ दुनिया मांगना और आखिरत को पीछे कर देना ये नाशुक्री की बात है। ऐसा इंसान उसका हाल क्या है? और दुनिया भी वो कौन सी मांगता है, हलाल से मिले कि हराम से मिले, बस मुझे मांगना है, मुझे चाहिए। बिल्कुल वही शख्स हो सकता है कि जिसकी नजर सिर्फ दुनिया पे। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं ऐसे शख्स के लिए आखिरत का कोई हिस्सा नहीं।